प्रेजेंटेशंस आज भी वेब 2013 की जितनी प्रेजेंटेशन वेबसाइट में वो इनके बेटे ने बनाई है। ये माँ हेल्प करती थी ऑफकोर्स, बहुत करती थी, और लेकिन वो उसको टेक्निकली पेश करना बच्चे का काम था ना, तो एक माँ नहीं बदलती। देखिए मैं इसको यूं समझूंगी, हमारे ऑनलाइन साथी भी हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। मुझे ऐसे लगता है कि हम औरतों के हाथ में घर की गाड़ी का स्टीयरिंग होता है। जिधर हम मुड़ती हैं ना, साथ वाली सीट पे बैठे मियाँ जी, पीछे बैठे हुए 3-4 बच्चे, 4 तो यहाँ बैठने नहीं देते, 3 ही सही। अब मजबूरी है कि हमें रेगुलर गाड़ी में तो 3 ही बच्चे करने पड़ेंगे। तो जैसे जहन होते हैं ना, वैसी चीजें भी बन जाती हैं। यहाँ से वॉक करके घर जाते हुए मेरी नजर एक गाड़ी के ऐड से गुजरी, तो उन्होंने कहा कि अब 4th बेबी इज नॉट अ प्रॉब्लम, यानी हमने ऐसी बड़ी गाड़ी बना ली है कि उसमें पीछे एक बच्चे की सीट रखने की जगह है। तो मैं उस वक्त भी सोच रही थी, पता नहीं कितने देख के सोचते होंगे, लेकिन मुझे आदत है सोचने की। तो मैंने कहा कि वाकई अब बहुत सारे लोग जो इसलिए भी चौथा बच्चा नहीं पैदा करते होंगे कि गाड़ी में जगह ही नहीं है। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि जिधर औरत मुड़ती है ना, उधर पूरा घर मुड़ जाता है। कभी ये हुआ कि स्टेयरिंग मुड़े तो साथ वाली सीट ना मुड़े, और वो मुड़े तो पीछे वाली ना मुड़े? कभी नहीं होता। ये हम औरतों को सिर्फ अपने आप को जमाने, औरत टेढ़ी हो तो सारा घर टेढ़ा होगा। हम नहीं समझती औरत है बड़ी कमजोर चीज, लेकिन इसमें ताकत बहुत ज्यादा। और एक बात याद रखें, फितरत का असूल है कि नाजुक चीजें जो होती है ना, वो ज्यादा बोझ उठाती हैं। आपने कभी भी कोई मजबूत कुर्सी बनानी हो तो वो फ्लेक्सीबल होगी, हार्ड चीज जल्दी टूट जाती, क्रैक हो जाती है। सख्त किस्म के प्लास्टिक की आप कुर्सी लेके आएंगे, थोड़े से बोझ से वो टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ना, सॉफ्टनेस, वो बहुत बड़ों बड़ों को झुका देती है। तो कभी भी ये ना सोचें कि हम कमजोर हैं। अल्लाह सुब्हान तआला ने कमजोर डालियों पे इतना फल लगवाया हुआ है, आप और मैं देखते ही हैं जी। तो बस आगे चलते हैं, आज हमारे पास इतना सख्त टारगेट है कि जिसको कहकर वही मुहावरा याद आ रहा है कि वह कम है और मुकाबला सख्त है। पिछला सबक भी पूरा करना है, वो तो चले अल्लाह करवा देगा, लेकिन आज का जो अगला हमारा नया सबक है उसमें बहुत कुछ है आपके लिए। 2 बहुत बड़े टॉपिक हैं, अगर अभी शौक दिला दूं कि एक तो आपको वलीउल्लाह बनना आ जाएगा, विलायत लेनी है तो और दूसरा टॉपिक इंशाल्लाह शुरू में ही है, उसको हम देखेंगे। तो मैं शुरू करूंगी आज, हम आयत नंबर सब बोलिए, किस नंबर आयत से हम शुरू करेंगे। ये सब आपके कमेंट्स रख रही हूँ, जिस दिन गुंजाइश होगी वक्त में इंशाल्लाह हम इसको लेंगे। तो पहले हम आज का जो हमारा सबक है, ये पिछले सबक की कंटिन्यूशन है, और इसको लेकर फिर हम आगे चलेंगे। आयत 40 सूरह यूनुस। जिनके पास कुरान नहीं है, गेस्ट हैं, तो प्लीज आप उनको ऑफर करें कुरान पाक, या स्क्रीन पर दें, कुछ भी करिए ताकि ये लोग भी पूरा एंजॉय करें। शर्तें نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। आगे देखेंगे आयत नंबर 40। अब बज़ाहर एक दफा आपको लगेगा कि मौजू पलटता है, अगर आपने पिछली आयतों पे थोड़ा सा गौर किया है तो आपको ये पता चल गया कि जिंदगी की बुनियाद हक पे है। एक चीज जो बाद में मेरे जहन में आई, जो मैंने शेयर नहीं की, और पूरा वीकेंड मैं संभालती रही अपने दिमाग में इस सोच के साथ कि भूल ना जाऊं, क्योंकि हमने जन को हक के मुकाबले में तो बहुत अच्छी तरह समझ लिया, लेकिन एक जन जो है वो इंसानों के मामले में भी होता है, जो बंदे की जिंदगी जीरन कर देता है, उससे भी अपनी जान बचानी है। जैसे अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि बहुत सारे लोग हुदन और हक के रास्ते को छोड़ के वो इत्तबा करते हैं, पैरवी करते हैं जन की, गुमान की। इसी तरह कुछ लोग, सारे नहीं, लेकिन कुछ लोग इंसानी ताल्लुकात में भी हकीकत शनास होने की बजाय जन शनास होते हैं। कैसे? अब कहेंगे इतना मुश्किल जुमला हमें कैसे समझ आए, तो इसको समझ लीजिए कि हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले इंसानों के बारे में ये इज्यूम करने लगते हैं कि ये मुझे पसंद नहीं करते, इनको मुझसे नफरत है, ये किसी और से इंटरेस्ट ले रहे हैं। मसलन आप देखिए कि इंसानी रिश्तों में अगर हम बुनियाद पे ही शुरू कर लें तो सबसे पहले शोहर बीवी का रिश्ता होता है। बस बीवियां अपने शोहरों के साथ एक बदगुमानी का गुमान करती हैं, ये तो खुश ही नहीं थे मुझसे शादी करने के लिए, इनको तो जबरदस्ती इनकी अम्मी ने माइल किया था, और ये तो शादी के अगले दिन से जरा मेरे से उखड़े उखड़े थे। कभी क्या होता है, शुरू में बड़े अच्छे थे, अब बदल गए, हो ना हो कोई लड़की इनकी जिंदगी में आ गई है, हो ना हो इनको बहन ने सिखा दिया, आप फील करेंगे, यानी आप मेरी इस बात को सिर्फ, मैं इशारा ही इस वक्त दे सकती हूँ, मेरे पास इतना वक्त में गुंजाइश नहीं मिल रही, लेकिन मैंने पूरा वीकेंड इस एक जुमले पे इतना गौर किया किसी भी वजह से, कि क्या हकीकत है कि हम अपने जैसे प्यारे मोहब्बत करने वाले इंसानों के बारे में भी जन का शिकार हो जाते हैं। आपके आपके पेट से निकले हुए बच्चे आपके बारे में जन का शिकार हो जाते हैं। मुझसे अम्मी ज्यादा प्यार नहीं करती, मैं बेटी हूं ना इसलिए, भाई को अम्मी बहुत प्यार करती है। अच्छा, ये पहला बच्चा है ना, इसको बहुत प्यार करती है। जैसे आप देखिए कि घर, एक घर था तो वहां चार बच्चे थे, एक पहले बेटी थी, फिर बेटा था, फिर तीसरी बेटी थी, फिर उसके बाद सबसे छोटा बेटा था। अब तरतीब ज़हन में रखिएगा, तो एक बच्चा जो घर में था वो क्या कहता था या कहती थी, कोई भी हो, वो कहती थी कि मेरी बहन यानी जो घर की बच्ची है सबसे बड़ी, उससे क्यों प्यार है अम्मी अबू को, क्योंकि वो पहली बेटी थी, पहले बच्चे से प्यार होता है। उसके बाद बेटा, पहला बेटा, उससे क्यों प्यार है सबको, क्योंकि वो पहला बेटा घर का। उसके बाद जो आखिरी बेटा है उससे क्यों प्यार है, क्योंकि वो घर का सबसे छोटा है। तो मैं बीच में बिचारी, तो ये जानना है, अगर जिंदगी को खूबसूरत करना चाहते हैं तो जिंदगी में रिश्तों में से जन निकाल दें। हम सगी दोस्तें, फ्रेंड, जान से एक दूसरे को चाहने वाले लोग, हम एक दूसरे के बारे में जन का शिकार हो जाते हैं। आज इसको ये होगा, ये इसकी किसी और से दोस्ती हो गई है, अब ये मेरे पास नहीं आती, अब ये मुझे बुलाती नहीं है, अब ये मसरूफ हो गई है, अब इसको कोई बड़ी दोस्त मिल गई है, हाँ जी अब इनके तो दिन ही और है। इस तरह की बातें आप इसको अपनी जिंदगी में बड़ा बड़ा करके लिख लें कि ये जिंदगी का जो रस है ना वो चूस लेती है। जिस तरह बंदा अल्लाह के इस मुकाबले में जन का शिकार होकर अपना नहीं रहता ना, इसी तरह बाज दफा हम बहुत खूबसूरत इंसानों को खो देते हैं इन चीजों में पढ़कर। रियलिस्टिक हो, कहीं आपको शक पड़ता है, देखिए जन का इलाज भी तो है ना, शक पड़ रहा है कि तेवर बदले में मियां जी के, तेवर बदले में बेटे के, मां के, बहन के, दोस्त के, कुछ भी ना करे, सबसे पहले तो दुआ करे कि अल्लाह, अल्लाह हमारी नल हक का हक कर, अल्लाह मुझे हक को हक करके दिखा, अल्लाह हमारी नल हक का हक कर वर्जुक न इतबा, मुझे हक को हक करके दिखा और मुझे फिर इसकी पैरवी भी करने वाला बना दे, यानी जो मेरी बहन या मेरी दोस्त या मेरे शौहर के दिल में मेरे बारे में हकीकत है ना वो दिखा दे, यानी मेरे दिल से ये बदगुमानियां और वसों से निकाल। और अल्लाह हमारी नल बातिला बातिला, ए अल्लाह मुझे बातिल को बातिल करके दिखा, यानी ये मेरी सिर्फ सोचे हैं। बिलीव में कुछ औरतें सिर्फ इसलिए तलाक तक पहुंच जाती हैं कि वो शौहर के बारे में बातिल सोच रही हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये कैसे, फिर बाज दफा ऐसे हालात बन भी जाते हैं। ये भी बता दो, ये भी एक असूल आगे जाके हम पढ़ेंगे कि वही हुआ जिसका डर था, ये होता है, जिस चीज को जिस एंगल से लेंगे वैसा होगा। तो कह अल्लाह नहीं, मैं अगर अपने शौहर पे बदगुमान हूं, मैं गलत सोच रही हूं, मैं अपनी नन, मैं अपनी बहू, सास, बेटी, किसी के बारे में ये सोच रही हूं कि ये मुझ पे जादू करती है, ये मेरे खिलाफ बाबा जी के पास जाती है, इसका जितना मर्जी वसी कर लीजिए एंगल, आप बढ़ता जाएगा। सबके ऊपर अल्लाह से कि अल्लाहुम्मा अरज़ुक़नी, क्या कर, मुझे बातिल को बातिल दिखा, वारिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबा हो, और मुझे इससे इज्तनाब करने की तौफीक दे। बिलीव मी, आपका दिल शीशे का दिल बन जाएगा इंशाल्लाह, फिर आप एंजॉय करेंगे और फिर आप वलीउल्लाह बनेंगे, जो अगले सबक में हम पढ़ेंगे। अब चलते हैं आयत नंबर 40 पे। वमिनहुम, और इन्हीं में से कौन, मैं युमिनु बिही, वो है जो ईमान लाता है इस पर, किस पर, हक पर, कुरान पर, अल्लाह के नाजिर करदा फरमान पर, लेकिन कुछ बदनसीब, बदकिस्मत। वमिनहुम मन ला युमिनु बिही, और कोई तो ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाते इस पर। कितनी लंबी बहस कर ली हमने हक पे, हुदन पे, सब कुछ पता है, दूध का दूध है, पानी का पानी है, निथर के हक सामने आ गए, इसके बावजूद तौफीक सबको नहीं मिलती। सबको पता है हक है, कुरान है, हिदायत है, कितने काफिर हैं आज जिनको ये दिल की गहराइयों से यकीन है कि इस्लाम सच्चा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी बड़ी खूबसूरत थी, आपने कभी किसी को दुख नहीं दिया, इसके बावजूद भी लोग नहीं मानते। वह रब का अलम बिल मुफसिदीन, तो आपका रब तो मुफसिदों से खूब वाकिफ है, यानी आप फिर इनको इनके हक पे छोड़ दें। देखिए ये आखिरी दर्जा होता है, अगली आयत भी आ रही है तो उससे पहले ही समझ लीजिए। एक सच्चा दाई दीन, दाई दीन कौन है, जो लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाता है, वो बड़ा मुखलिस होता है, जन से पाक होता है। तबलीग का भी जन ये है कि मैं कहीं जाते हुए पहले ही अज्यूम कर लूं कि ये नहीं मेरी मानेंगे, इन्होंने कहा मानना, ये भटके हुए, ये इतने नाफरमान, ये इतने मॉडर्न, ये फलां, ये तो वो, ये तो वो, करते कराते हम लोग पहुंच जाते हैं। तो जब भी दीन की बात किसी को भी सुनाने निकले घर से, और अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे, तो घर से ये सोच लेके जाया करें कि आज तो सभी मान जाएंगे, आज तो सबका ही दिल खिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब शुरू में पूरी कोशिश, पूरी मोहब्बत, पूरी पूरी बात करने के बावजूद कोई ना माने, ये भी होता है। ये आपको याद होगा, आज अगले सबक में भी ये बात आज भी आनी है, तो यहीं नोट कर लें कि सूरत यूनस चूंकि मक्की दौर की आखिरी सूरत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की बात पहुंचाते पहुंचाते 13 साल होने को आ रहे थे। ऐसे वक्त में जब एक दिन, दो दिन, चार दिन, हम तो दिनों की बात करते हैं, वहां दिन नहीं, महीने नहीं, सालों की बात थी। और अगर 365 दिन लगाइए एक साल में, तो उसको 13 से जरब देके देख लीजिए कि कितना लंबा अरसा टाइम गुजर गया। अब भी नहीं माने, अबू जहल नहीं माना, उतबा नहीं माना, शैबा नहीं माना, रबिया नहीं माना, वलीद बिन मुगीरा नहीं माना। जो नहीं माने तो अल्लाह कहते हैं प्लीज लेट देम डू वट एवर दे आर डूइंग, इनको इनके हाल पे छोड़ दो। कुछ तिलों में तेल होता ही नहीं है। कभी आपने पंसारी को देखा होगा, वो घिसता है घिसता है, कभी तिल घिसता है, कभी वो सरसों घिसता है, थोड़े से घिसने पे इतना तेल निकल आता है। लेकिन कुछ इतने फुकले होते हैं, आप उसको ब्लेंडर में डाल के डालें, एक कतरा जूस नहीं निकलेगा। तो याद रखिए कि इंसानों को बाज दफा गुनाहों की लत दुनियादारी और नफ्सदारी इतना माइल कर देती है अपने आप को पूजने में। वीरम आप भी नोट्स लें जी, ठीक है। तो होता क्या है कि जब कोई नहीं मानता तो अब क्या किया जाए, बुराइयां शुरू कर दे उनकी, उनको गली गली में कि हमने तुमको इतना समझाया समझते ही नहीं है, इतना बुलाया मालते ही नहीं है, इतना डराया डरते ही नहीं, नहीं कहा वाइन कज़बू का आयत 41, ये पूरा टॉपिक चलेगा आगे, वाइन कज़बू का। अरे नबी अगर ये आपको झुटलाते हैं, 13 साल से झुटला रहे थे, तो अब क्या करो, फकुल ली अमली, तो आप कह दीजिए भाई मेरे लिए तो मेरा अमल है, वलकुम अमलुकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल है। ये है खूबसूरत बात, तुमने उनके प्रेशर में आके अमल करना नहीं छोड़ना, अगर वो तुम्हारे कहने पे अमल करते नहीं है। दूसरे लफ्जों में कह लीजिए कि पीयर प्रेशर में नहीं आना। ये है तबलीग का आखिरी नुक्ता। याद रखिए ये जुमला पहले दिन नहीं होगा कि ली अमली वलकुम अमलुकुम, पहले ही दिन जाके आज ही बच्चों को कि नमाज पढ़ो, नहीं पढ़ते तो ना से तुम जाओ आग में, मैं जाऊंगी जन्नत में। ये इसको लिखिए, ये जो ली अमली वलकुम अमलुकुम, इसको आप कह सकते हैं सलाम मुतारिका। इसको उर्दू में समझिए, हम कहीं जाते हुए एक सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं। फिर जब हम किसी से रुखसत होते हैं तो क्या कहते हैं, अच्छा भाई अस्सलाम वालेकुम। हमारे कल्चर में अमूमन ऐसे वक्तों में खुदा हाफिज कहते हैं, ठीक है ना। अब पहला सलाम क्या, तहिया, खुशी हो, इतने दिन बाद मिले, अच्छा लगा। लेकिन जब हम किसी को छोड़ते वक्त सलाम करते हैं ना, वो एक होता है कि अब तुम्हारे और मेरे बीच में जुदाई है, आई हैव टू गो, राइट। ये जो ना ली अमली वलकुम अमलुकुम, ये सलाम तहिया नहीं है, तबलीग का आगाज इससे नहीं करना। अच्छा भी तुम जो करते हो फिर करो, मैं तो अपने अमल कर रही हूं। करते रहें, तड़पते रहें, सुलगते रहें, अपने खून को जलाएं, जिगर को काटें, उनके लिए तहज्जुदों में दुआएं करें, उनको प्यार से बुलाएं, कभी तोहफे से बुलाएं, कभी दावत से बुलाएं, करते रहें करते रहें। जब ना माने तो फिर एकदम किनारा कशी, फिर बातें नहीं करनी, फिर बुरा नहीं कहना, फिर महफिलों में डिस्कस नहीं करना। क्यों, अंतुम बरी हो ना मिम्मा, भाई तुम बरी हो मिम्मा मालू जो मैं करता हूं, यानी तुम्हें मेरे अमल नहीं अच्छे लगते। तुम कहते हो ये रस्म और रिवाज से मुझे हटा रहा है, हम चौपालों पे बैठते थे ये जिंदगी का हुसन खत्म कर रहा है, तो ठीक है, यू डोंट लाइक माय एक्शंस, इट्स फाइन देन, अना बरी हो मिम्मा तामलून, तो मैं भी तुम्हारे अमल से बेजार हूं फिर। इफ यू डोंट लाइक मी देन आई डोंट लाइक यू, टिट फॉर टैट, नहले को दहला। तुम्हें अगर मेरे तरीके नहीं पसंद, तुम्हें मेरी बातें नहीं पसंद, तो मुझे तुम्हारे वो काम नहीं पसंद जो रब को नाराज करते हैं। गोया के इसमें एलाने बरात है, ना तो मेरे अमल की पूछ तुमसे होगी, ना तुम्हारे अमल की मुझसे होगी, तो लिहाजा अब तुम अपने काम करो। देखिए अल्लाह के नबी से ज्यादा कौन इन बातों को समझ सकता था, जिनके दिल पर रियायतें उतरती थी। तो मेरे और आपके लिए भी यही अमल है कि लोगों को इस तरह से पामाल ना करें कि आप उनके मुंह लगे, वो आपके मुंह लगे। फिर याद रखिए एक बात, आपको मैं आपकी सिर्फ नसीहत के लिए बताती हूँ, क्योंकि आप बच्चों की माँ हैं, हम सब खानदानों में इंसानों में हकीकत है। आप 11 बारे पढ़ ली हैं, अब तो तड़प और बढ़ गई, आग लगती है। ये कैसे हो सकता है आपके सामने किसी के दुपट्टे के पल्लू को आग लगी और आप उठ के ना बुझाएं? उसको नहीं दिख रही, वो पीछे है। आप सोचिए, आप बैठी हैं, आपकी बच्ची किचन में काम कर रही है, वो इंजॉय कर रही है, उसको पता भी नहीं, उसने कानों पे कुछ और लगाया, उसको इधर से आवाजें भी नहीं आ रही, एकदम पीछे आपकी नजर पड़ती है, उसके दुपट्टे के पल्लू पे आग लग गई है किसी जगह से। बैठी रहेंगी, कोई नहीं, इट्स ओके, एंजॉय, शी इज एंजॉयिंग, लेट हर डू, लेट हर फिनिश। नहीं, आप तो आओ देखेंगी ना, तो देखेंगी जाके झट से उसके ऊपर उजालेंगी चीज। बस यही कैफियत कुरान वाले की होती है, और ये होनी चाहिए। ये कैफियत रखे लेकिन लोगों के पीछे ना पड़े। जो आम दुनिया के कामों में लोग पड़े होते हैं ना, वो आपकी तड़प अभी नहीं समझ सकते, उनको पता ही नहीं आपको खजाना क्या मिल गया। तो लिहाजा तरीके से, सलीके से, लेकिन जब कोई मुंह से कह दे डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डू दिस, मैं नहीं मानूंगा, खबरदार अगर तुमने मुझे फजर पे उठाया, अलार्म लगाया तुम्हें, मैं डांटूंगा। बाज दफा सुबह घरों में झगड़े इस बात पे हो सकते हैं, तो फिर बरात, फिर आप अपना काम खामोशी से करती रहें, और आप देखिएगा कि आपकी तड़प सच्ची होगी, तो इंशाल्लाह। वो लोग आपके पीछे आएंगे। आयत 42 में कुछ और लोगों का तज़किरा है, ये बात चल चुकी, समिया होता है सुनना, लिसन, और इस तमिया जिसमें ता लग जाती है, ये होता है गौर से सुनना, केयरफुली, बहुत ज्यादा, यानी कान रख के सुनना, जिसको अपनी जुबान में कहते हैं। यानी कुछ ऐसे हैं बज़ाहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो आपके पास बैठते हैं, ऐसे लगता है हर चीज उनके सामने है। और समिया में होता है बगैर कोशिश के सुनना, और इस तमिया में होता है सुनने में कोशिश से काम लेना। इसको यूं समझिए कि आप बैठी काम कर रही हैं कंप्यूटर पे, आपके पास कोई बैठा बातें कर रहा है, कुछ चीजें खुद बहुत कानों में आती हैं, बच्चे लड़ रहे हैं उनकी आवाजें आएंगी, ठीक है, ये है समिया। और इस समय क्या आपके तहरे में जरा सुनूं क्या बातें हो रही हैं, ठीक है। तो मुराद क्या है कि वो पूरी कोशिश से सुनते हैं, लगता है कि सुन रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अफान तस्मे उसम्मा, तो क्या बहरों को सुना सकते हैं? वलौकानु ला याकिलून, और चाहे वो अकल से काम ही ना लेते हो, क्या हो गया आपको? यानी जो पहले से ही ना सुनने का तहिया करके आए हैं, इनके कान हक की तरफ से बहरे हो गए, इनका आपकी बातों को सुनना सिर्फ दिखावे का सुनना है, ताकि दूसरे लोगों को ये बता सकें कि हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जाते हैं, सारी बातें भी सुनते हैं, मगर उधर कोई ऐसी बात ही नहीं मिलती कि जिसको माना जाए। ये टोन है, ये मैंने अपनी टोन से आपको इसका मफहूम समझाने की कोशिश की है। देखिए, नबी सल्लम की महफिलों में मुनाफिक तो छोड़ दीजिए, यहूद भी आते थे। आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी इज्जत की बात थी कि नबी की महफिलों में आओ? आज के दौर में लीजिए मिसाल, हम किसी से जाके कहें कि हम कुरान पढ़ने जाते हैं, तो कौन सा कोई लोग हमें तमगा पहनाते हैं? कोई खुशी की बात तो नहीं है। हम किसी को यह कह दें कि हमने ऑक्सफोर्ड कॉलेज में या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, तो हाव भाव बहुत होगा ना। तो फर्क क्या, उस दौर में यह मेयार था, नबी की महफिल में आना इज्जत और ऑनर का मेयार था। तो वो शोबाजी के लिए तो कहते थे हम जाते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लेकिन जाके पढ़ते पढ़ाते कुछ नहीं थे, ये कैफियत थी। तो अल्लाह कहते हैं कि जो कोई ऐब चुनने के लिए सुनेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, वमिन हो मई यन जुरु इलाई का 43, और इनमें से बाज ऐसे हैं जो आपको देखते हैं। अफान तथा दिलुमिया, तो क्या बंदों को हिदायत देंगे? वले उकान उलायुब सिरून, हाँ वो देखते भी ना हो। देखिए, पहले सुनने की बात है, अब देखने की बात है। यानी जब इन लोगों की नियत ही हिदायत को अपनाने की नहीं है, हिदायत लेने ये आए ही कोई नहीं, तो आप इनको हिदायत दे सकते हैं? आप देखिए ना, कोई किसी स्टोर पे जाता है ऐसे ही, कभी आप अपनी किसी दोस्त के साथ चली जाती होंगी, कभी मियां साहब के साथ आप भी ऐसी चली जाती हैं कि चले इन्होंने कुछ लेना है मैं भी लूं, ना आपकी नीयत है लेने की, ना आपकी जेब में पैसे हैं, ना आपको जरूरत है। कितनी भी वहां खूबसूरत कपड़ों में सजी सजी औरतें लड़कियां आपको बुलाई, ये कम हेयर, लुक एट दिस, आप जाते हैं, आपको समझ आता है मुझे ये चीज नहीं चाहिए, नहीं लेते। तो जिस ग्राहक ने लेना नहीं होता, ये कई जगह आपने भी देखा होगा, एड़ी चोटी का जोर लगा दे ना दुकानदार, तो वो ग्राहक हाथ नहीं खोलता, बल्कि फिर अखीर ये कह के उठ जाते, अच्छा घर जाके सोच के आती हूं। यही बात है इधर, हिदायत की दुकान से हिदायत सिर्फ उसको मिलेगी जो सिर्फ और सिर्फ एक चीज खरीदने आएगा, हिदायत। اور اس کے برعکس الذین اشتروا الدلالت بالخدا فما ربح تجارتهم وما كانوا مقتدین. سورہ بقرہ سے یہ مضمون پڑھتے آ رہے ہیں. اس آیت پہ تو ایکسٹریم آ گئی نا, کہ جو ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے جاتا ہے. آپ شاپنگ مال میں ہی سوچ لیں, آپ تو گئی تھی کوئی اپنی من پسند جوتی لینے, جوتی چاہیے تھی. اب اس دکان پہ کھڑی کوئی عورت آپ کو سویٹر دکھائے, یہ لے لو وہ لے لو, کر لو, آپ لیں گے, آپ کہیں گے مجھے جوتی لینی ہے. تو پہلے اپنے دل سے پوچھیں طلب ہے, ہدایت کی طلب نہیں ہے نا تو ہدایت نہیں ملے گی. جیسے پانی کی طلب نہ ہو تو لاکھ کوئی کوشش کر لے, ایک گھونٹ دل میں نہیں جاتا. تو ایسے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنا, ان کی مجلسوں میں بیٹھنا ہی ان کو فائدہ نہیں دے رہا تھا, کہ جہاں سے صحابہ کو ایمان مل رہا تھا, کیونکہ ان کے دل اندھے ہو چکے تھے. اگلی آیت میں 44 میں اب جواب ہے کس بات کا, کہ پھر اللہ کیوں نہیں ہدایت دیتا لوگوں کو. تو اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, یقیناً اللہ انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا. ولیکن الناس انفسهم یظلمون, بلکہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں. پہلے یہ بتائیے کہ اس آیت کو سنتے ہی آپ کو پیچھے کوئی آیت یاد آئی, لفظ نہیں یاد آئے ہوں گے لیکن یہ مضمون یاد آیا. جی کوئی بتائے کہاں آیا تھا. جی آپ سمجھے, وہ تو ادھر جی آپ کو وہ آیا وما ظلمون ولکن کانوا انفسهم یظلمون. ہمارے اما ابا آدم اور حوا کے لیے لفظ آیا تھا, درخت کا پھل چکھا تھا نا, پہلا سن تھا اس دنیا میں. ہم کہتے ہیں ہائے نہ چکھتے, ہائے یہ نہ ہوتا وہ نہ ہوتا. اللہ کہتے ہیں انہوں نے پھل چکھا, ہم نے ان سے جنت کا شاہی لباس چھین لیا. یہی بات ادھر ہے کہ اگر اللہ آج کچھ لوگوں کو ہدایت نہیں دے رہا تو اس میں اللہ کا کوئی ظلم نہیں ہے. یہ لوگ ہیں جو خود اپنے اوپر ظلم دیتے ہیں, کل قیامت کے دن جا کے یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ جی میں تو بہت کرنا چاہتا تھا, ہدایت لینا چاہتا تھا, انہوں نے دی نہیں. اچھا ایک جملہ نوٹ کریں, عموماً ہمارے کلچر میں لوگ بولتے ہیں, کبھی آپ کہیں کہ مثال ہے ایسے ہی آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں, نماز کی تو ہم لوگ کم ہی دیتے ہیں کیونکہ وہ تو مرد ہی دیتے ہیں کہ آئیے گا جی نماز پڑھنے. کوئی مثال ہے کہ آپ کے شوہر کسی دوسرے اپنے ہمسائے کو کہتے ہیں چلیے میں فجر پہ جاتا ہوں آپ کو بھی لے لوں, تو آگے سے کیا کہتے ہیں آپ دعا کیجئے گا اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. اتنا بڑا کراس لگا لیں, اس دعا کی قبولیت پہ کوئی زیادہ امید نہ رکھیں. ہاں وہ یہ کہیں ہاں بردر میں بہت سٹرگل کرتا ہوں, میں کوشش بھی کرتا ہوں پھر بھی نہیں اٹھ پاتا, آپ میرے لیے دعا کریں, پھر دیکھیے گا پلس بڑا بڑا سا پلس بنے گا. آپ الارم کے آپ کسی کو فون کر کے کہہ دیں اٹھے فجر کا ٹائم میں پڑھ لیں تو وہ نو تھینکس کہہ کے بند کر دے گا. تو ہدایت صرف اور صرف طلب پہ ملتی ہے. یہی بات ان کے بارے میں کہی, اللہ ظلم نہیں کرتا. ہاں اب دنیا تو گزر گئی, کیوں نہیں آتے لوگ ہدایت پہ. دنیا اس دن کارو اس مال میں, اس دنیا کے شاپنگ مال میں اتنی ڈسٹریکشن ہے, گھر سے ہدایت کی پونجی سوری گھر سے ہدایت لینے کے لیے نکلے تھے لیکن وہاں جا کے اور اتنی چیزیں پسند آ جاتی ہیں, ہدایت کے لیے پیسے نہیں بچتے. تصور میں آ گیا کوئی بندہ, آپ 100 پاؤنڈ جیب میں ڈال کے نکلیں کہ مجھے مثال ہے کہ عید کے لیے تیاری کرنی ہے, یا کوئی بھی چیز لے لیں, یا کوئی اچھی چیز لے لیں, یا آپ اپنی کلاس کی کوئی چیز لینا چاہتے ہیں جو آپ کی ضرورت کی ہے, 100 پاؤنڈ کچھ بھی کر لیں, اور 100 پاؤنڈ جیب میں تھے ضرورت کی چیز کے, اور آپ کو وہاں الٹم پلٹم گلٹم اتنا دکھ گیا کہ اس میں سے 80% پیسے تو وہیں ختم ہو گئے, پیسے بچے ہی نہیں. آج انسانوں کا یہی حال ہے کہ ان کے پاس ہدایت کے لیے نہ پیسے ہیں, نہ ہدایت کے لیے وقت ہے, نہ ہدایت کے لیے صحت ہے, اور نہ کچھ اور ہے. اگلے سبق میں اس پہ بہت ڈیٹیل سے بات ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب دیکھو دنیا تو گئی, یہ دنیا کی سنڈے مارکیٹ جو ہے نا یہ ایک دن ختم ہو جائے گی, فیو آورز ہیں. اب ہوگا کیا, اب دیکھیں منظر پلٹتا ہے. آیت 45 دنیا ختم, موت گئی, قیامت بھی آ گئی, اور ہم سب اگلے پچھلے اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ, اور جس دن وہ ان کو جمع کرے گا, کن کو, یہی پیچھے گھاٹے کے سودے کرنے والوں کو بھی لگے گا کیا ان کو, کَلَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ, تو وہ محسوس کریں گے جیسے کہ نہیں رہے مگر دن کی ایک گھڑی. يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ, وہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے. امیجن کیجئے ذرا, میدان محشر ہے, انتظار ہو رہا ہے, اور اس انتظار میں لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. یعنی ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے, آگے بھی پڑھیں گے ہم سورہ معارج میں غالب بناتا ہے, یبصرونہم, एक दूसरे को दिखाए जाएंगे, दोस्त दोस्तों को देख रहे होंगे, बच्चे औलादे माँ बाप को, शौहर बीवियों को, सब देख रहे होंगे। लेकिन दुनिया और बरजख में गुजरा हुआ वक्त ऐसे महसूस होगा जैसे एक दिन का कुछ हिस्सा, पूरा दिन भी नहीं, कुछ हिस्सा। और बाज कहते हैं ये यतार अफूना बेनम, क्या क्यों कैसे लगेगा कि दुनिया में तो बस अभी एक तारुफ ही हुआ था और आगे चले गए। हजरत नूह जिनका तस्करा अगले सबक के आखिर में आएगा, कहते हैं कि उनको अल्लाह ने 1000 साल उम्र दी। जब उनकी मौत का वक्त आया तो फरिश्ता उनके पास आया, कहने लगा कि ए नूह, आपको इतनी तवील उम्र मिली, क्या महसूस किया? तो कहते थे बस ये लगा कि कमरे के एक दरवाजे से दाखिल हुआ तो दूसरे से निकल गया। क्या ये हकीकत नहीं है? हमारा सिर्फ अभी इस दुनिया से तारुफ होता है तो जाने का वक्त आ जाता है, अभी जवानी से तारुफ होता है तो उधेड़पन आने लगता है, अभी जरा मेच्योरिटी इंजॉय करने लगते हैं तो बुढ़ापा शुरू हो जाता है, अभी बुढ़ापे की कुछ लाड अदाएं निभाते हैं तो अर्जल उम्र आ जाती है। ये हमारी जिंदगी है। 2-3 दिन पहले कहीं जाने का इत्तेफाक हुआ, बहुत यंग सिस्टर्स, बहुत खुश, सब अच्छा अपने काम कर कर आ रहे थे, तो वहां एक बड़ी उम्र रसीदा खातून भी थी। घर वालों ने उनको जाहिर है कि बहुत अच्छे कपड़े भी पहनाए हुए थे, जैसे हमारे घरों में बहुत इज्जत देते हैं, तो लेकिन जान पे लगी हो तो किसी को क्या लगे। आखिर में मैं उन अम्मा जी को थोड़ी, मेरे बिल्कुल रेंज में थी नजर की ना, तो मैं देखती रही, बैठी हुई थी बेचारी अपनी जगह पे, बहुत कंफर्टेबल काउच पे। थोड़ी देर बाद उनकी यूं गर्दन हिली, फिर ऐसे, फिर कभी, फिर मैंने देखा वो यूं सोई हुई है। सब हंस बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन आखिर उनकी, मेरे हाले कोई थी तो वो उनके पास आई, तो कहा अम्मा अंदर जाना है, तो कहती हाँ, चली गई। ये है यथार अबू नबीन, उनको क्या लगे दुनिया की रौनकों और महफिलों से। वो कहते ना कि दिल इस दुनिया की चमन में क्या लगाना है, अभी सिर्फ चंद चीजों को इंजॉय करने लगते हैं तो दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है, और उस दिन दुनिया की जिंदगी बेकार लगेगी। एक दूसरे को जानते और पहचानते तो होंगे, सवाल पैदा होता है क्या मदद भी करेंगे? नहीं, हैबत और खौफ की वजह से एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकेंगे। तो इस, वो कहते हैं ना कि जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है। आगे क्या किसी को याद है? जा ये दिल लगाने की नहीं, जी फरहाना, इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अल्लामा इकबाल का एक शेर है ना कि बदल कर भेस फकीरों का, तमाशा अहले करम देखते हैं। बिल्कुल, जो मैंने आपको भी कैफियत बताई उस महफिल की, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि मैं सबके रूप देख रही हूँ, सबके रंग देख रही हूँ। तो इस दुनिया में इबरत की निगाह से गुजरो, कोई खुश है तो वो कैसा है, जो बीमार है वो क्या लग रहा है। हम सिर्फ अपने ऊपर लेकर जीते हैं, आज कितनी अच्छी दिन है, आज कितना अच्छा दिन है, आज सूरज खिल गया, आज मैं भी कुछ सेहतमंद हूं, आई एम फ्रेश नो। मत सोचे अपने आप को, अपने इर्द गिर्द देखे, आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि कद खसिर अल्लजीन कज़बू बिलिकाइल्ला वमा कानू मुहतदीन, वो लोग बड़े खसारे का शिकार हुए जिन्होंने झुटला दिया अल्लाह की मुलाकात को। वमा कानू मुहतदीन, ये है आखिरी कमेंट इस टॉपिक पे जो पीछे से चलता आ रहा है कि और ना हुए वो हिदायत पाने वाले। बात हिदायत तो खुदन की चल रही है ना, हक की। अल्लाह कहते हैं जिन्होंने अल्लाह से मुलाकात को झुटला दिया, फिर उनको क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला। और हिदायत ना मिली तो दुनिया के बाजार से कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए, अल्लाह सुब्हान ताला ने इस दुनिया को बहुत लिमिटेड बनाया है, यहां हर चीज छोटी है। जब हम आखिरत के मैदान में जाएंगे ना, तो वहां जाकर ये सब कुछ छोटा इसलिए भी लगेगा कि आखिरत अनलिमिटेड है। मिसाल है कि जैसे ये पानी का ग्लास आपको ज्यादा लगेगा, अगर आपको ठीक प्यास लगी, आप पीना चाह रहे हैं, प्यास नहीं है, इसके सामने जग रख देंगे तो ये और छोटा लगेगा। और अगर आप दरिया के किनारे बैठे हैं और पूछें ये पानी कितना है, और अगर आप समंदर के किनारे हो, बस ये दुनिया समझे, ये दुनिया में बहुत बड़ी लगती है। क्यों? इसलिए कि आखिरत के अन मिट किस्म के नक्कूश अभी हमारे जहनों पे नहीं है। जिसकी नजर आखरत पे चली गई, फिर उसको वहां की फिक्र लगेगी, वहां का खाना, वहां का पीना। और याद रखिए, बेगम होने का राज ही है कि आखरत का गम लगा ले। पहले भी एक दफा मिसाल दी थी, फिर देती हूँ, कोई बात नहीं, 10 दफा भी सुन ले तो तस्कीर है ना, कि एक बच्चा, एक बाप अपने 3-4 बच्चों को लेके किसी बाग में जाता है, अब उसको छोटे छोटे बच्चों के साथ फिक्र क्या है, कोई चिमटा मेरे बच्चे के पाँव पे ना चढ़ जाए, कहीं कोई चिमटी ना आ जाए, कोई कॉकरोच ना आ जाए, खौफ है ना, वो बचाएगा बच्चों को। इतने में अगर दूर से भेड़िया की आवाज आए तब बाप का काम क्या हो गया, भेड़िया भेड़िया, उसको सारा जंगल भेड़िया दिखेगा। बस अगर हम आखिरत के भेड़िए को अपनी जिंदगी बना लें, ये स्ट्रेस, ये डिप्रेशन, ये गम, ये कीड़े मकोड़े हैं, क्योंकि किसी दुनिया की नाकाम हसरत के नतीजे होते हैं, हमें खुद भी नहीं पता होता, हमारे लाशौर में छुपी भी चीजें हैं। तो अल्लाह कहते हैं कि जिनको हिदायत नहीं मिली है, तो हकीकत में बैंकरप्ट है। ये खसीरा के नीचे इंग्लिश में तर्जमा लिख लें, बैंकरप्सी। दुनिया में किसी के बैंकरप्सी के बारे में सुने तो कितना तरस आता है, साथ ही जेहन में आता है कि कल करोड़पति थे आज कखपति हो गए, कल के लखपति आज के कखपति हैं। बिल्कुल इसी तरह से वहां बैंकरप्सी किन की है, जिनको दुनिया में बड़ी चौधराहटें मिली हुई थी, जिनके पास दुनिया में बहुत कुछ था, इसलिए अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं कि इनको उस दिन हिदायत नहीं मिली। आगे अजाब की एक धमकी का जिक्र है, जिसके बारे में आयत 39 में आया था ना, कि वलम यातिहिम तावीलुहु, कि अभी तो इसकी हकीकत भी इन पर नहीं खुली। तो आइए जरा आयत 46 को देखिए, कि नबी को झुठलाने वाले, मक्का शहर, अल्लाह का प्यारा नबी, अल्लाह का कुरान उतर रहा है, जिब्राइल की आमद है, अबू बकर सिद्दीक को आंखों से देख सकते हैं, ईमान मिल जाएगा, उमर को देख ले, हक और बातिल का फर्क मिट जाएगा, फिर भी नहीं आते। देखिए कितनी बड़ी बात थी, बदबख्त अबू जहल। चले आज हम तो 100 उजर करके सच्चे बन जाएंगे अपनी नजरों में, लेकिन जिन्होंने अल्लाह के नबी ने के दौर में कुरान को नहीं माना और रसूल को नहीं माना, फिर क्या अल्लाह ने उन पर जुल्म किया, कठोर थे। सूरज निकला और कोई के मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, तो उसकी फिर आंखें कमजोर नहीं है, वो अंधा हो चुका है। बिल्कुल यही बात कही, क्या वैसे लोग इनके बारे में क्या फैसला है। आयत 46, वइन मनुरियन्नकबादल्लज़ीना नईदुहुम, और अगर हम दिखा दें आपको इसमें से कुछ अजाब जिसका हम इनसे वादा कर रहे हैं, किन के अजाब, इन मक्का वालों पे, आपको झुठलाने, आपसे मुंह मोड़ने के बाद अब जो अजाब आने वाले हैं, अगर है नबी आपकी जिंदगी में हम इनको दिखा दें, या आपको, या फिर ये फर्स्ट फॉर्म है, ये हुआ नहीं, ये कुछ हद तक हुआ, औ न तवफ्फयन्न का, या इससे पहले ही हम आपको वफात दे दें। समझिएगा कि अजाब तो इनका नसीब है, क्योंकि नबी की तकजीब, कुरान की तकजीब छोटी नहीं। अब है नबी, दो चॉइसेस है, आप अपनी आंखों से इनका बुरा अंजाम देखें, आप इनको एड़ियां रगड़ते हुए मरता देखें, या फिर आपके बाद आपके सहाबा के दौर में इनके ऊपर अजाब आए, आना जरूर है, मुराजी है। फइलैना मरजिउहुम, बस इन्हें हमारी ही तरफ लौट कर आना है। सुम अल्लाहु शहीदुन अला मा यफालून, फिर अल्लाह गवाह है इस पर जो वो कर रहे हैं। यानी आखिरी मुहासबा तो इनका क्यामत के दिन होना ही है, मगर हो सकता है कि दुनिया में सजा का कुछ हिस्सा इनके लिए खास कर दिया जाए, जैसा कि बाद में हुआ। मुश्रिकीने मक्का पर अजाब दो किस्तों में आया, पहला अजाब, या आप कह सकते हैं कि अजाब की पहली किस्त गजवे बदर वाले दिन चुकाई गई, इनके सरकर्दा लीडर्स, बड़े बड़े 70 सरदार कत्ल हुए और 70 जो थे वो कैदी बन गए। कितना बड़ा अजाब है किसी कौम के 70 बड़े मर जाएं, मार दिए जाए इतनी बेबसी की मौत। और दूसरी और आखिरी किस्त इस अजाब की, जो अल्लाह के नबी की जिंदगी में हुई, वो 9 हिजरी में हुई। अल्टीमेटम दिया गया, फसीहु फिल अर्द दिया रबात अशहर, कहाँ दिया आप बोले, सब सब बोल दें। सूरत तौबा आयत 2 में, 4 महीने मजे कर लो, मौज मस्ती कर लो, चंद महीने की मोहलत है, ईमान ले आओ, हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, ले आओगे तो ठीक है, नहीं तो मार दिए जाओगे। और आज तक वहां काफिर दाखिल नहीं हो पा रहे। ये अल्लाह का जालों की तादाद बहुत थोड़ी होती थी, 60-70-80 लोग होते थे एक नबी के साथ सिर्फ, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लम की 12 साल की मेहनत के नतीजे में अहले ईमान की तादाद तकरीबन 150-200 हो चुकी थी। अबू बकर, तलहा, जुबैर, उस्मान, अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत उमर, हजरत हमजा, इस जैसे अजीमुल कदर लोग मौजूद थे। तो अल्लाह ने फिर मक्का पे कोई आसमानी आफत नहीं भेजी, वरना तो सारे मारे जाते, इसलिए अल्लाह ताला ने इनको मोहलत दी। और जिन्होंने आपकी नाकदरी की उनको डरा दिया। यहाँ जो शहीद है ना, ये बमानी शाहिद है, गवाह के, यानी आपने लोगों को डराया, लोग नहीं माने, सजा के मुतालबे करते रहे, तो कहा कि अब हो जाए, नबी की जिंदगी में तुम्हारी दुर्गत बने बनेगी, اور باقی نبی کے بعد ہوگا. اور آپ دیکھیں نبی کے بعد ابو بکر صدیق عمر کے دور میں صرف عربوں کی درگت نہیں بنی, کیسرو کسرا روم فارس ایران اور سب کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا. تو اصل بات یہ ہے کہ مہلت کا ایک وقت ہوتا ہے, نبی کے دنیا سے جاتے ہی مہلت ختم. ان کی کس بات کی؟ کہ وہ صحابی کا لقب پاتے. آج ہم سب پوری کوشش کر کے بھی مومن بن سکتے ہیں, اللہ کے حکم سے متقی بن سکتے ہیں, ہم وہ ساری صفات اپنے اندر لا سکتے ہیں جو ہم نے سورۃ توبہ میں پڑھی, لیکن ہم میں سے کوئی اب صحابی نہیں بن سکتا. وہ مہلت ختم اللہ کے نبی کی دنیا سے جاتے ہی. اسی لیے آیت 47 میں کہا وَلِكُلِّ أُمَّتِ الرَّسُول, اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. بس مہلت بھی ہے اور امت کا لفظ پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا مختلف معنوں میں آتا ہے, مہلت کے لیے, قوم کے لیے, وقت کے لیے, یعنی یہاں مراد امت ہے. ہر قوم کو اللہ ایک رسول دیتا ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ, پھر جب آیا ان کا رسول, فَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, تو ان کے مابین عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا گیا. بار بار آپ دیکھ رہے ہیں ظلم کی بات نہیں. سورت یونس ہے نا, اس میں قضاء اور قدر پہ بہت بات ہوتی ہے. آگے آخر میں ایک آیت بھی آئے گی جس کے موضوع پہ انشاءاللہ پرسوں غالباً آ رہا ہے وہ موضوع, تقدیر کے موضوع پہ بھی بات ہوگی کچھ حد تک. تو یہاں بھی دیکھیں یہ جو لا یظلمون کا لفظ یظلمون دوسری دفعہ آ گیا نا, تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اصل میں یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ اللہ نے جن کو ہدایت نہیں دی تو وہ ظلم نہیں تھا بلکہ ان کے اندر چاہت نہیں تھی. پچھلی قوموں نے نبیوں کو جھٹلایا, بات ختم. اب اس قوم نے نبی کو نہیں مانا, اب جو مرضی کریں. ان کی نسلیں تو آئیں گی اس نبی کے راستے پہ, لیکن یہ اس سے محروم کر دیے گئے. آیت 48, وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور وہ کہتے ہیں کب یہ عذاب کا وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. یہ کون کہتے تھے؟ نبی کو. اور دیکھیے ڈھیٹ پن کی حد ہے. ایک تو نا کہ بچے کو ماں کی ڈراوے سے ڈر آئے کہ ہائے امی ناراض ہوگی, امی ماریں گی, اور ایک ڈھیٹ پن ہے اچھا پھر کریں, کہتی کیوں نہیں ہے, کہتی تو ہمیشہ, اچھا یہ پھر کر کے تو دکھائے, کب کر رہی ہیں آپ, یہ سٹائل تھا. اس میں تمسخر ہے, میکنگ فن, موکری, نبی کا مذاق اڑاتے تھے کہ بتاؤ جی یہ کب آئے گا عذاب. یہ کہتے ہو کہ قیامت آنی آنی, یہ ہماری پکڑ ہونی ہے, اللہ نہ ماننے والوں کو بہت نقصان دیتا ہے, ہم تو دن رات پھل پھول رہے, یہ آپ کا ہی کچھ نہیں بن رہا آج تک, یہ سٹائل تھا. تو اللہ کے کہتے ہیں ان کو جواب دو. آیت 49, قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا, اے نبی آپ ان سے کہہ دیئے میں تو خود اپنی جان کے لیے بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا, نہ کسی ضرر کا نہ نفع کا, ہاں مگر الا ما شاء اللہ, سوائے اس کے جو اللہ چاہے. کتنا کلیئر عقیدہ, نبی کو فائدہ خود بھی نہیں لے سکتے جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ دے. تو گویا کہ ہمارا عقیدہ بھی نبی کے بارے میں واضح ہونا چاہیے. لکلی امت نجل, ہر امت کا ایک وقت معین ہے. یعنی جو عذاب ابھی نہیں آ رہا نا, اس کی دو وجوہات ہیں اس آیت میں. نمبر ایک کہ بھائی آئی کین فورس اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ گیو دیم پنشمنٹ, یہ مطلب ہے. یعنی نبی کا بھی اختیار نہیں ہے, جب تک اللہ نہیں کسی کو پکڑتا نا تب تک پکڑ نہیں ہوتی, یاد رکھیے. اس لیے میں اور آپ کبھی کسی انسان کے بارے میں یہ جملہ نہ بولیں فلاں پہ اللہ کی پکڑ ہے. بعض دفعہ مائیں اپنے بچوں کو بد دعا دے دیتی ہیں, تیرے پہ تو اللہ کی پکڑ آئی ہے, مت کہ. یہ نبی کا بھی کام نہیں ہوتا. اللہ جب تک نہ پکڑے نبی کچھ نہیں کر سکتے. بدر جا کے 13 اور 2 15 سال بعد جو ہوئی, تو مکہ کے تیسرے سال کروا کے تو ان کو مروا دیتے اللہ. نہیں, اللہ کہتا ہے, نبی بھی کہتا ہے کہ میرے اندر اختیار نہیں. اور دوسری وجہ یہ کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے. اللہ آخری حجت پوری کرتا ہے لوگوں کو پکڑنے سے پہلے. پہلی دوسری غلطی پہ اللہ کوئی نہیں پکڑتا, آخر میں پکڑتا ہے. جب بندہ اس پہ شرمندہ ہونے کی بجائے اور خوشیاں بنائے اور دوسروں کو بھی اس کے اپنے قصے وہ سنائے, تو اللہ کو اس پہ غصہ آتا ہے. تو مکہ والوں کی پکڑ کا وقت جو تھا وہ لیٹ تھا, اس لیے کہا کہ وہ مہلت پوری ہوئی. اذا جا جلوہم, جب ان کا وقت آ جاتا ہے, فلا یستاخرون, پھر وہ ایک گھڑی بھی آگے نہیں کر سکتے. کتنی ساعت, یعنی جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ایک گھڑی مؤخر نہیں کر سکتے. جو لفظ ہے نا یستاخرون, یہ تاخیر لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں, مؤخر کرنا. روٹ کیا ہے؟ حمزہ خارا. اذا جاء اجلهم, ٹھیک ہے, ولا يستقدمون, اور نہ وہ आगे बढ़ते हैं। मतलब क्या है सारी बात का, कि जब अल्लाह की पकड़ आती है तो नबी नहीं बचा सकते, कोई कुछ नहीं हो सकता, लोग कुछ भी कर लें, जैसा मर्जी कर लें, अल्लाह के हुक्म से ही पकड़ भी आती है। तो आयत 50, अब यहां जवाब है इस बात का कि जब अल्लाह का अजाब फिर आ जाता है तो क्या होता है। कुल अरायतुम इन अताकुम अजाबुहु बयातन अव नहारन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कहिए क्या तुमने गौर किया कि अगर तुम पर अल्लाह का अजाब नागहान यानी अचानक आ धमके, रात को या दिन के किसी वक्त में, मा सयस्ताजिलु मिन्हुल मुजरिमून, तो वो क्या शय है जिसके बल पर ये मुजरिम जल्दी मचा रहे हैं। मतलब के ये तो सीना तान के अजाब मांग रहे हो, लाओ अजाब, पकड़ो अजाब, कब नहीं आ रहा, तो इनको कह दो जब अजाब आएगा ना रात की किसी घड़ी में आ जाएगा। यहाँ लोचो ना बयातन, बैत, बैत घर को कहते हैं, और बयात कहते हैं कहीं रात बसर करने को, स्लीप ओवर। घरों में चूंकि रात बसर की जाती है तो रात का ठिकाना घर, ठीक है, और अक्सर देखें घरों में रात को ही बैठते हैं, सारा दिन तो घर भी बेचारे खाली होते हैं, इतने महंगे घर, इतने किराए, और घर आधा दिन खाली होते हैं, बीवी भी जॉब पे तो मियां भी जॉब पे, तो बच्चे भी कहीं कामों में, बहरहाल रात को तो बहरहाल इंसान घर में आ ही जाता है, ठीक है। तो कहा कि रात को, और नहारा नहर से, मां से यस्ताजिलु, यस्ताजिलु में क्या है, आइन जीमला, उजलत, यानी ये अंदाज है मजाक का, अच्छा जी बड़ी देर की मेहरबान आते आते, यानी अब ख्याल आ गया आपको, अब किस चीज की करते हो हिफाजत, तो क्यों अजाब को ललकारते हो, होगा क्या। आयत 51, असुम इजा मा वका आमन तुम भी, फिर क्या जब वो अजाब वाकई हो जाएगा तब तुम लोग इस पर ईमान लाओगे। वही अंदाज है कि देर किसकी कर रहे हो कि अजाब आ जाए, अच्छा, और जब अजाब आएगा तो क्या कहा जाएगा, इस लफ्ज को हाईलाइट कीजिएगा, आल आना, क्या अब, ये जो आल आन है ना, ये थोड़ा सा अंदाज समझिएगा, इसमें दो हमजाएं मिल गई हैं। आ क्या होता है, क्या हर्फ इस्तेफाम है, क्वेश्चन है, ठीक है। आल आन कहते हैं अब को, माजी और मुस्तकबिल के दरमियान का वक्त क्या होता है, वो प्रेजेंट, माजी और मुस्तकबिल के बीच का जो टाइम है ना उसको आल आन कहते हैं, यानी टुडे नाउ इस वक्त, ठीक है। तो आ उसके ऊपर क्वेश्चन की लग गई, अल साथ इसके वैसे लगता है, तो ये लंबी आल आन बन गई, समझे। अल की एक अलिफ है, एक हमजा की है, और एक उस असल असल लफ्ज की है, ठीक है। तो कहा कि कहा जाएगा, अच्छा जी अब आपको ईमान सूझा, वकद कुन तुम बिही तस्ताजिलून, और इसी की तो तुम जल्दी मचा रहे थे, यानी अजाब जब आएगा तो फिर लग पता जाएगा कि बड़ी बातें करते थे बड़ी बड़ी, अब जब अजाब आया तो तुम्हें पता चल गया कि इसकी तुम बातें करते थे, गुजर गया, आ गया, आने वाला है, सब कुछ है। आखिरी आयत सबक की, सुम कील लिल्लज़ीना ज़लमू, फिर कहा जाएगा इन जालिमों से, ज़ूक़ु अज़ाबल खुल्दी, अब हमेशा के अज़ाब का मजा चखो। मांग रहे थे ना, ऊपर से नोट करते जा रहे हैं ना, मांग रहे थे कब आना है अज़ाब, कहा आ गया जिसका आपको इंतजार था, ये बी लेटेड अज़ाब है, या जिसको आप कहें कि बी वेटेड अज़ाब है, जिसका इंतजार फरमा रहे थे आ गया वो वक्त, और जिसके बारे में आपको डाउट्स थे वो आ गया, और आके टलेगा कोई नहीं, अजाबुल खुल्द, हल तुजज़ौन इल्ला बिमा कुंतुम तकसिबून, तुम्हें बदला नहीं दिया जा रहा मगर तुम्हारे अपने ही करतूतों का। तो क्या पता चला, अजाब को मांगने की बजाय हिदायत को मांगो। पूरे सबक का खुलासा देख ले, हक के रास्ते से भागने वाले एक ही रास्ता है कि पलटो, दैट्स इट, वरना आज सबमिट नहीं करोगे, आज सरेंडर नहीं करोगे तो कल जब तुम्हारी असल पकड़ आएगी ना तो फिर तुम अपने आप को पीछे लेके जाओगे। यहां तक तो दुनिया की बात है, अब अगला सबक बिल्कुल इसी सोच के साथ शुरू होना है। कोई बात आपके जहन में अगर है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम नेक्स्ट लेसन पे चलेंगे। आपने देखे कुरान की आयतें मोतियों की तरह पिरोई हुई है, एक एक आयत के अंदर ऐसे मेरा तो अपना दिल चाहता है कुछ बोलूं ही ना बीच में, इतना खूबसूरत रिदम है कुरान का। थोड़ी सी गहराई से मुतालिया करके देखिए तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कॉन्वर्सेशंस हैं, डायलॉग्स हैं। चलिए हम यहाँ रोक पूरा करके मैं दुआ पढ़ूंगी ताकि लेसन हमारा कंप्लीट हो, फिर अगला शुरू करते हैं। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज्जती अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين. اگلے سبق پہ چلیں گے.